بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اس سے بھی پہلے کہ انسان بنایا اگر انسان نہ ہوتے کسی نالی میں رینگتا ہوا کیڑا ہوتے تو ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے کچھ بھی تو نہیں بگاڑ سکتے تھے اور پھر اس کے بعد کہ جب انسان بنایا تو صحیح الجسم بنایا اگر ہمارا جسم گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا اور جہاں بٹھایا بیٹھ گئے جہاں پڑے پڑ گئے تو آپ سوچئے کہ زندگی کی جو رونق اور جو خوبصورتی معیار آپ انجوائے کر رہے ہیں کیا یہ زندگی ہمارے لیے ایک بوجھ نہ ہوتی ایسے بچے جو اپنی ضروریات سے خود فارغ بھی نہیں ہو پاتے تو عموماً جو ہی وہ بڑے ہوتے ہیں جتنے وہ بڑے ہوتے ہیں اتنا لوگوں کو ان کی ماؤں پہ رحم آنے لگتا ہے ترس آتا ہے ہائے اب تو اٹھایا بھی نہیں جاتا اب تو بھاری ہو گیا اب تو اس کو واش روم میں بھی لے کے جانا مشکل ہے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میرا آپ کا اپنی ضروریات کو خود پورا کر لینا دوسروں کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے اسی طرح سے ایک انسان جب دنیا سے جانے کے قریب ہوتا ہے اور جس کو قرآن نے ارض العمر کہا بڑھاپا کہا تو اس عمر میں بھی انسان دیکھا جائے تو دوسروں کے اوپر بوجھ ہو جاتا ہے اگر آپ دیکھیں تو قرآن نے کہا نا کہ ننقص خفی خلق افلا تعقلون ہم انسان کی تخلیق کو پلٹ ہی دیتے ہیں یعنی جیسے ایک بچہ بیہیو کرتا ہے جو ایک بچے کا رویہ ہوتا ہے وہی عموماً بڑے کا بھی ہو جاتا ہے بات بات پہ رونا ضد کرنا کھا نہیں سکتے پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کے محتاج ہونا اور بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اتنی بحث کرنا بات کرنا تو انسان بڑھاپے میں بھی دوسروں کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے ہم پیار تو بہت کرتے ہیں اور ہمیں افسوس بھی بہت ہوتا ہے جب کوئی ہمارا پیارا جاتا ہے لیکن ذرا سچن لمحے کے لیے سوچیے کہ آج تک جو دنیا میں انسان آئے وہ جاتے نہ اپنے پیاروں کو لے لیجیے اپنی ماں اپنی دادی اپنی نانی اور 200-300 سال کی ہونے پہ اب آپ کو ان کی ضروریات کو دیکھنا ہے اور آپ کو ان کی بد مزاجی کو برداشت کرنا ہے اور اسی طرح سے دوسری چیزیں تو کیا آپ کے دل میں ان کی جو آج بھی محبت ہے وہ قائم رہتی نہیں رہتی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے موت دی اور موت کے بعد قبر دی سورۃ عبس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اما تہو فاقبرا موت دی پھر قبر دی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کون سی اللہ کی نعمت ہے موت کیوں کیسے نعمت ہے آپ کہتے ہیں موت نعمت نہیں ہے میں کہتی ہوں موت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ مزید بے بسیوں سے بچانے کے لیے ہمیں اس وقت جب کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے بوجھ بننے لگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وقت ہمیں دنیا سے اٹھا لیتا ہے یہ ہمارا بھرم ہے یہ ہماری عزت ہے ہمارے ماں باپ کو دنیا سے جانا ہے بالکل اسی طرح مجھے آپ کو ہم سب کو بھی جانا ہے جب سے یہ بات دل میں رہ گئی کہ حضرت فاطمہ کے باپ نہ رہے تو پھر کسی عورت کسی بچی کو اپنے باپ کی فکر نہیں کرنی چاہیے اور یہ تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہمارے باپ ہمیشہ سے رہیں گے اور اسی طرح سے جب سے فاطمہ کی ماں خدیجہ چلی گئیں تو ہم میں سے ہر ایک کی ماں نے جانا ہے اور اسی طرح سے عائشہ اور حفصہ کے شوہر چلے گئے ہر شوہر نے جانا ہے کلو من علیہا فان اس زمین پہ جو کچھ ہے سب فانی ہے اور کل شیء ہالک الا وجہ ہر چیز ہر چہرہ ہلاک ہونے والا ہے سوائے اس کے چہرے کے تو لہٰذا کسی جانے والے کے اوپر غم کرنا یہ اپنے وقت کو مزید ضائع کرنا ہے بلکہ غم اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی قدر نہ کر سکے या हम उनकी कोई नाफरमानी कर चुके, या फिर हमने उनकी ज़िंदगी में वो खिदमत ना की जो कर सकते थे, और गम इस पे हो कि अल्लाह न करे जाने वाला बेनमाजी चला गया, और गम इस बात पे कि जाने वाला वो नेकियां ना कर सका जो कर सकता था। फिर दूसरी बात देखिए कि अगर कब्र ना होती तो क्या होता, हमारी लाशें यूं पड़ी रुलती दुनिया में इधर से उधर और उधर से इधर, और कोई उनका पुरसाने हाल ना होता। आपको पता है कि जिस्म में 10 मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं, हमने एक वीडियो पे दिखाया था, एक साल दौरे कुरान में भी क्लासेस में दिखाते हैं, कि यकीन करें कि उसको देखकर तो दिल करता है अल्लाह हमें कब्र नसीब करना। आपकी मेरी ये जिस्म बिल्कुल बदल जाता है, नाखूनों का रंग बदल जाता है, आंखें फट के बाहर आ जाती हैं, जिस्म के अंदर जरासीम पैदा हो जाते हैं, हड्डियाँ डिमोलिश होनी शुरू हो जाती हैं, वो सब कुछ देखते वक्त तो वाकई लगा कि फाक बरा कब्र कितनी बड़ी नेमत है। फिर आप देखिए कि वो कितना खुशकिस्मत है कि जो अपने प्यारों के हाथों से कब्र में जाए। देखिए कि अच्छी तो नहीं लगती मौत किसी को, लेकिन जिसके पीछे बहुत सारे हों रोने वाले या दफनाने वाले, आप देखिए कि वो उसके लिए दुआएं करेंगे ना। जैसे अमूमन तो बड़े ही जाते हैं, लेकिन अगर किसी का बच्चा ही चला जाए और माँ की ज़िंदगी में चला जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इसमें खैर देखिए कि क्या होती है कि फिर वो माँ जिस रो रो के तड़प के साथ दुआएं करती है वो कोई और नहीं कर सकता, ऐसी है ना। तो लिहाजा शर में खैर है। मुझे आपको हमेशा ज़िंदगी के ऐसे मामलात जिसको मैं और आप समझ ही नहीं पाते ऐसा क्यों हुआ, उसकी असल और उसकी खैर को ढूंढने की ज़रूरत है, और हम देखें कि क्या हकीकत में वाकई अल्लाह सुबहान ताला ये जो बार बार के बुलावे मुझे आपको देता है, क्या मुझे इन बुलावों से फ़ायदा हो रहा। आप देखिए कि आप किचन में खड़ी हैं और आप अपनी बच्ची को बुलाती हैं, एक बार बुलाया, फिर दो बार बुलाया, फिर तीसरी बार भी बुलाया, और हर बार वो आपके बुलाने के बावजूद टस से मस ना हो, वहाँ खड़ा कह दे या बच्ची है तो कह दे जी, फिर अपने काम में लग गई, फिर आप पूछते जी बात सुनो इधर आओ जी। वो हमारी एक दोस्त है तो वो कहती है कि जब हम बचपन में अपने बाप को जैसे बच्चे थे, तो आजकल तो बच्चों को जहाँ बुलाएं वो वहीं खड़े होकर पूछ जी बोले क्या काम है, तो कहती है कि जब हम में से कोई बचपन में इस तरीके से करता, यानी बाप ने बुलाया और हमने दूर से कहा जी, तो कहते थे एस जी नुवट्टा मरना है, मेरे पास आओ, दूर खड़े जी जी करते हो आप। और मैं देखे तो कभी हम अल्लाह के मामले में ऐसे जी जी नहीं करते। जब अल्लाह हमें करीब से बुलाना चाहता है, जब अल्लाह सुबहान तला मुझे आपको इस दुनिया की असल दिखाता है, तो हम दूर से जी 2-3 दिन ज़रा सा दिल महसूसा होता है, और वो दिन बड़े करीब होते हैं हकीकत के करने के, हकीकत के करीब हो जाता है बंदा, रियलिस्टिक हो जाता है, इस दुनिया की असल दिख जाती है। और लोग कहते नहीं इसको डिप्रेशन है, ये बेटी बड़ी दुखी है, जाओ इसको बाहर ले जाओ, या इसको मरी ले जाओ, घूमने ले जाओ, यानी वो जो ज़रा सा भी एक इंसान के अंदर तब्दीली और तगैयर का अंसर भी पैदा हुआ है, हम उसको भी मिटा देते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला ये बार बार के बुलावे क्यों देता है, ताकि हमारा इस दुनिया में जो एक्स्ट्रा मिलान है, जो ज़रूरत से ज़ायद हमने इसको ले लिया ना, उससे पीछे हो जाए। अब देखिए हर चीज़ का एक मकसद है, आप और मैं भी आज यहाँ इस घर में एक मकसद से आए हैं ना। अब इस वक्त इस काम को छोड़कर हम मिलें, बातें करें, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो क्या हो गया था, फिर कैसे, फिर अगले पिछले कलाबे जोड़ने लग जाएं, और जिस मकसद के लिए आए उसको छोड़ दें, तो हम बेवकूफ़ हैं, ना समझ हैं हम लोग, ये ना समझी की बात है। हकीकत ये कि आज के इंसान ने इस दुनिया में आने का जो मेन मकसद था वो भूल दिया। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
ببركة وزات जिसके हाथ में ज़मीन और आसमान की बादशाहत है, जिसने पैदा किया ज़िंदगी और मौत को, ताकि वो देखे कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। तो खुशी और गम इम्तिहान के दो पर्चे हैं, हम में से हर एक कभी ना कभी किसी ना किसी लम्हे एक पर्चे को हल कर ही रहा होता है, या हम खुशियों में मगन हो जाते हैं या गमों में, और बहुत सारे लोग उनकी ज़िंदगी क्या है सच कहूँ तो बस इन्हीं दो चीज़ों को निभाते हुए उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है, या वो किसी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं, शॉपिंग और इसी तरह के उसके साबके और लाख के, और या फिर गमें भुगतते। मैंने देखा है गाड़ी कभी नहीं घर में खड़ी रहेगी किसी की मौत की खबर सुनकर। दो दो तीन तीन घंटे दूर से लोग सफ़र करके आते हैं। ठीक है, हमें नीयत तो अच्छी ही रखनी चाहिए। देखिए, जो मरता है उसके घर वालों के से ताज़ियत का बड़ा अजर है। हदीस में आता है कि उसको अजर मिलता है जब एक बंदा जाता है। फिर दूसरी बात है कि नमाज जनाजा अदा करना, इसका भी बहुत सवाब है, किरात सवाब है। फिर जब वो दफन तक भी साथ रहे तो दो किरात, ये सबको पता है ना, तसल्ली देने के उसका सवाब और एक जनाजा पढ़ने का सवाब और दूसरा उसके कफन दफन तक साथ रहने का सवाब। अगर हम ये सिर्फ और सिर्फ नेकी के लिए करते हैं ना, तो मस्जिद के साथ हर रोज़ शहर में 20 मौतें होती हैं। आप हॉस्पिटल वालों से एक लिस्ट ले सकते हैं कि आज कितने लोग मरे। चलिए चलते, मुसलमान थे ना, कोई गैर हो अपना हमें क्या लगे। जाके उनके घर वालों को जाके सब्र की तलकीन कीजिए, फिर जनाजा पढ़िए, फिर दफन करने आ जाइए, है ना। आप ज़रा सा समझिए, मेरी बात आपको अच्छी वैसे लगेगी नहीं, क्योंकि मैं अपने ख़ानदान में बैठ के ये बात कर रही हूँ, क्योंकि ये सबसे मुश्किल होता है। मैंने देखा है कि हम सारी ज़िंदगी भी जिसको नहीं मिले होते ना, कई दफ़ा तो दिलों में नाराज़गियाँ भी होती हैं, कई दुरते भी होती हैं, रंज और शिकवे भी होते हैं, लेकिन जूँ ही किसी के मरने की खबर आती है घर में, किसी के करीबी बड़े छोटे, हम सब पहुँचते हैं वहाँ। अगर सवाब और अजर के लिए तो ये तो हर रोज़ मिल सकता है, लेकिन वो भी होगा, दिल का दुख भी होगा। ये नहीं कि सारे ऐसे होते हैं, लेकिन अमूमन ज़रा से दूर के रिश्तेदारों को देखिए तो अमूमन वो एक दुनियादारी होती है। लोग कहेंगे अच्छा इनके घर से कोई भी नहीं आया, अच्छा कोई भी नहीं। और कई लोग कहते हैं कि मैं, यानी किसी की बात कोई कह रहा था तो उन्होंने कहा जनाजे में मैं तो उनके बेटे को ही देखता रहा, ज़रा वो एक दफ़ा मुझे देख ले फिर मैं निकलूँ। यानी लोग सामने सामने होते हैं, देखना चाहते हैं, फिर अगर कोई आए और ख़ामोशी से चला जाए और घर वाले ना देखे तो बाद में बकायदा पोस्टमार्टम होता है, फलां के घर से कोई नहीं आया, हम तो इतनी दूर गए थे, हम तो उधर से गए थे। आप देखिए कि ये चीज़ें नीयत के फ़र्क के साथ अजर का ज़रिया बनती हैं, और नीयत ना करें तो ये सिर्फ दुनियादारी का काम है। अब आप देखिए कि 3-4 घंटे की ड्राइविंग और उसके बाद फिर सारे ख़ानदान को जमा करना और उस घर में जमा हो जाना, जो घर वाले पहले ही सदमे से चूर हैं। सच बताइए कि क्या ये एक बहुत समझदारी का फैसला है? कभी तो बिल्कुल ही अचानक मौतें होती है ना, कुछ जहन के किसी गोशे में भी नहीं होता। और कई जगह तो ऐसा होता है कि जो घर के करीबी लोग हैं वो बेचारे खुद ही किसी सफ़र पे होते हैं, कोई इधर उधर हो रहा होता है। यानी कहने का मकसद ये है कि ऐसे वक्त में हर आने और जाने दूसरे वाले को, और फिर वहाँ रहना और फिर बैठना और दो दो तीन तीन दिन तक वहाँ महफिलों का जमना, मेरा ज़ाती ख्याल है कि घर वाले को उस वक़्त उसकी खुशी नहीं हो रही होती। ये तो मैंने खुद किसी करीबी से भी सुना अपने हमारे ख़ानदान में कि बिल्कुल सडन उनके शौहर की डेथ हुई थी, और सुनकर फिर जब लोग आए तो 10 दिन तक घर में ही रहे जो करीबी बहनें और भांजियाँ जो भी थे, तो वो कहती थी कि मेरा दिल करता है ये सब जाएं और मैं अपने शौहर को सोचूं, क्योंकि इतनी अचानक मौत थी कि जहन तैयार ही नहीं था। तो कहती थी ये हम सुबह शाम नाश्ते, और शायद आज से कितने साल पहले की बात है, कई हज़ारों का तो सिर्फ सुबह नाश्ता आता था, और सिर्फ 10 दिन का उनके बेटों ने जो ग्रोसरी के बिल दिए वो कई लाख थे, और वो सब बैठे और वहीं रिश्ते जुड़ रहे हैं और वहीं बातें चीतें हो रही हैं, और ज़रा कोई अपना सामने आया तो हौका भर लिया या गुठलियाँ पढ़ते रहे, और या फिर फालतू वक्त में कोई बीच में बाजार का भी चक्कर लगाता है। अब देखिए कि हम कब तक ये घर घर खेलेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बामकसद इंसान थे, महज़ब इंसान थे, जिसके पास कोई काम नहीं होता ना, याद रखिए वो हमेशा मसरूफ़ होता है। वो कहते हैं ना कि बाबा वेला, करता जो कुछ नहीं ना हर एक उसको काम कहेगा। हमने आज वो काम छोड़ा हुआ है जिसके लिए अल्लाह ताला ने मुझे आपको इस दुनिया में भेजा था। रियली नमाज रोज़ा नहीं है इससे मुराद, वो तो हमने सबने पढ़ी हुई है, माशाल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह कायम रखे और हमें इस नमाज़ों की असल रूह पर ले जाए, लेकिन जो असल ज़िंदगी का एक माहवर और एक मरकज़ था ना, वो भूला हुआ है। जैसे पुरकार का अंदर का सिरा हिल जाए तो बाहर के दायरे हिल जाते हैं। हम आज वो नहीं कर रहे जो करने के लिए हम भेजे गए। जो काम नबी सल्लम ने हमें दिया दुनिया से जाते हुए, आप लोग एक बहुत बड़ा काम हमें देकर गए और कहा कि तुम में से जो लोग आज मौजूद हैं वो उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं है, और वो क्या था, इंजार, इबलाग। अपनी दुनिया मुख्तसर रखो और दूसरों को फ़ायदा दो, दो लफ्ज़ों की कहानी है। जिसकी अपनी दुनिया मुख्तसर होगी ना, वही दूसरों को फ़ायदा देगा, वही हिजरत करेगा, वही कुर्बानी करेगा, वही सफ़र करेगा और वही किसी के लिए कुछ वक्त निकालेगा, वरना हमारी दुनिया इतनी एलेबोरेटेड है आज, और हम मजबूर हैं। दो दो आंसू निकल आएंगे अगर कोई मैं ज़रा मजबूर करेगा कि आपको मेरी मजबूरियाँ नहीं पता। इट्स ट्रू, बट वो बेकार के मशगले हैं, वो बेकार की मसरूफियात है। अगर मैंने आपने इस दुनिया में आकर दुनिया में आने के मकसद को नहीं पहचाना, और मैंने और आपने आकर अभी इस किताब को नहीं समझा, और मुझे और आपको अभी तक अल्लाह और उसके रसूल की वो मर्ज़ी मालूम ही नहीं हुई, तो यकीन कीजिए ये बाकी सब सबके और लाख के हैं। सबका होता है चीज़ जो पहले लग दे, लाख का जो पीछे है। नबी सल्लम की ज़िंदगी को अपने सामने रख लीजिए, आप देखिए कि चले जवानी को तो एक साइड पे कर देते हैं ना, हालांकि आपकी जवानी बेदाग, 40 साल की उम्र मुबारक तक एक शख्स ज़िंदगी का एक कामयाब तरीन शख्स था। नबी सल्लम शहर के बेहतरीन ताजिर थे, आपकी शादी की वजह ही आपकी तिजारती खूबियाँ बनी, आपकी सच्चाई ने आपको सादिक और अमीन कहलाया, ऐसे ही है, आपकी समझदारी और हिकमत अमली से मुतासिर होकर आपको बिल्कुल ऐन जवानी में मक्का में दो बहुत बड़े मामलात, एक खिलफुल फजूल का हुआ और एक हिजरे अस्वद की तनसीब का हुआ, आपको उसमें हकम बनाया गया। यानी कहने का था कि ही वॉज़ अ कम्प्लीट मैन। मत सोचिए कि वो आज की ज़ुबान में कोई बिल्कुल ना समझ रखने वाला कोई शख्स, या लोगों की बकौल के जी को मुल्ला मौलवी था और जिसको दुनियादारी आती कोई नहीं तो पकड़ कर अल्लाह का रास्ता शुरू किया। नबी सल्लम ही वॉज़ द एप्पल ऑफ आइज़, लोगों की आंखों का सितारा थे, चांद तारा थे, लोग आपसे मोहब्बत करते थे। आप जिस बंदे से एक दफ़ा ज़िंदगी में मिल लेते थे उसका दिल करता था कि मैं दोबारा मिलूं, और जिसका आपसे एक दफ़ा तिजारती वास्ता पड़ जाता था लोग दोबारा आपसे वास्ता लेना चाहते थे। लेकिन इधर अल्लाह का हुक्म आया कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम। इधर ये पैगाम आता है अल्लाह के नबी ने, जो दुनिया की ज़रूरियात थी उनको मज़ीद मुख्तसर करना शुरू कर दिया कि पहले मैं तो अपने रब के नाम के साथ जुड़ूँ। याद रखिए हमारे दीन की पहली ईंट इकरा है, पढ़ो। कौन सा पढ़ो? बिस्मी रब्बी का। हर पढ़ाई, चाहे साइंस, चाहे मैथ, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश, उर्दू, हर इल्म जिसके बाद आपको अपने रब से कुर्बत महसूस हो जाए ना, वो बिस्मी रब्बी का। वरना कुरान पढ़ के भी रब ना मिले तो वो भी दीनी इल्म नहीं है। हिफ्स कर ले और नमाज़ों की आदत ना पड़े वो भी इल्म नहीं है। पूरा कुरान सीने में आ जाए और ज़िंदगी की रविश ना बदले ये भी कोई इंसान की ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी वो जिसमें आपको अपना मालिक अपने सामने दिखे दिन रात, आप झूठ बोलने लगे रब सामने, धोखा देने लगे रब सामने है, किसी की गइबत करने लगे रब सामने है, किसी पे जुल्म करने लगे, फालतू ज़ुबान का इस्तेमाल होने लगे, किसी अपने दबे हुए घर वाले में से किसी मुलाजिम, किसी बहू, किसी बेटी बासास, किसी के साथ बदतमीज़ी करने लगे रब सामने है। जब रब सामने आ जाता है ना तो दुनिया की सारी रंगीनियाँ और चमक दमक कम हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी ज़ात रब की ज़ात है। और फिर जब उसके कुछ अरसे के बाद कौम फानजिर की वही उतरी कि उठिए या अयुहल मुज़म्मिल क़ुम लैला क़लीला, पहले रात के क़याम की बात हुई, फिर चंद दिन के बाद सूरह मुद्दसिर या अयुहल मुद्दसिर क़ुम फानजिर, ए चादर लपेटने वाले अब उठिए और खड़े हो जाइए और लोगों को आगाह कीजिए। अब आप और मैं सोचते हैं अपने ऊपर लेकर, रात का क़याम, यानी आप कहें कि क़ियामुल लैल, रात को तहज्जुद, रात को रब के साथ बातें, ऐसी है ना, इंस्ट्रक्शंस लेना देना, अपने दुख सुनाना, तो अपनी बेबसी के इजहार करना, और दिन में कौम फानजर, लोगों को अल्लाह की बात मिलाना। ये है असल में एक खूबसूरत तरीका ज़िंदगी, जिसको नबी ने 40 साल की उम्र में अगर अपनाया तो डेथ बेड, बिस्तरे मर्ग जिसको आप आज की ज़ुबान में कहें, वहाँ आपकी ज़ुबान पे क्या बातें थीं, क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है, और क्या कहा, सलातु वमा मलकत ईमानु को, नमाज नमाज और नमाज, और जो तुम्हारे ज़ेर इख्तियार हैं लौंडियाँ ग़ुलाम और औरतें, इनके मामले में अल्लाह से डरते रहना। साहबियात और आपके अजवाज बताती हैं और साहबा कि आपकी टांगें ऐसे ज़मीन में लुढ़क रही थी, जान निकल चुकी थी टांगों से, और दो लोगों के सहारे पे मस्जिद तक आते हैं और नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं, जब तक पढ़ा सके खुद पढ़ाएं, और जब पढ़ा ना सके तो अपने हुजरे से सर निकाल कर देख रहे होते थे कि लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। آج میں اور آپ اسی نبی کی امت ہیں، آج میرا آپ کا نام بھی امت محمدیہ کی لسٹ میں شامل ہے، آج ہم سب بھی تو مسلمان کہلاتے ہیں۔ کوئی پرتاؤ، کوئی رنگ، کوئی شیڈ ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب کی زندگی سے ہمارے عام لوگوں کا، جو ایک کامن مین ہے آج کا؟ دیکھیے، ہر سوسائٹی میں ایکسٹراڈنری ایگزامپلس ہوتی ہیں، نہ ایکسٹراڈنری کی بات ہے بہت اچھوں کی، اور نہ ایکسٹراڈنری بیڈ کی بات ہے، چور و چکوں اور ایسے خراب لوگوں کی بھی نہیں بات کر رہے، میں تو صرف اپنے اور آپ جیسے ایوریج لوگوں کی بات کرتی ہوں۔ دیکھیے، جو اکثریت ہوتی ہے نا، وہی اصل ہوتی ہے۔ جیسے آپ دودھ دیکھیں تو اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی جھاگ آتی ہے یا بلائی آتی ہے، اصل پورا 2-3-4 کلو لیٹر جو وہ دودھ ہی ہے اندر، ایسی ہے نا؟ یا اگر نیچے کوئی چھاچ بیٹھ جاتا ہے لسی کے، تو وہ بھی تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ آج امت کا عمومی مزاج کیا ہے؟ کیا آج ہم سب اپنی دنیا کو غم، ہم خوشی، دکھ، سکھ تو نہیں بنائے ہوئے؟ پتہ کیسے چلتا ہے؟ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرا اصل غم اور ہم دنیا ہے یا آخرت ہے؟ اس کے لیے ادھر تو نہیں، اب تو بالکل وہ ماحول ہی نہیں بنے گا۔ اچانک کھڑے کھڑے آپ ایک ہفتہ اپنی مانگی ہوئی دعائیں نوٹ کریں۔ کوئی عمرے پہ جاتا ہے، عموماً کیا دعا کراتی ہیں آپ؟ کوئی بڑا مل جائے، امی جی میرے لیے یہ دعا کرنا، وہ کیا ہوتی؟ وہ لکھے، جو اٹھتے بیٹھتے آپ کے دل کو غم لگا ہوا ہے وہ لکھے، اندیشے لکھے، اور خوشی کس چیز کی ملتی ہے؟ یہ تین آئینے دیکھ لیں، آپ کی میری دعائیں، آپ کے میرے غم اور ہم، اور آپ کی میری خوشیاں اور امیدیں، یہ تین بتاتی ہیں کہ ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں کہ آخرت کے لیے۔ اور اس میں کوئی غم برا نہیں ہے، کوئی خوشی بری نہیں، پر ایک ڈومیننٹ یہی ہے، بچہ پاس ہو جائے، بچے کے امتحان اچھے ہو جائیں، شادی ہو جائے، بیٹی کا رشتہ ہو جائے، بیٹے کا گھر بن جائے، کاروبار چل جائے، میاں کی جاب اچھی ہو جائے، ان کا ہاتھ کھلا ہو جائے، گاڑی مل جائے، گھر مل جائے۔ دیکھیں، اس میں کوئی چیز بری نہیں، جو خود فل بدی بغیر کسی سوچ کے لانے کی جو دعائیں نکلتی ہیں نا، وہ ابھی دنیا ہی کی نکلتی ہیں۔ ہاں، پھر ذرا موڈ بن جائے، پھر کہتے ہیں ہاں ان کی آخرت کی بھی کرو، ہاں کرے۔ میں نے بہت کم لوگوں کو، عام لوگوں کو، یہ دعا کراتے دیکھا کہ دعا کرے پل سرات پہ پاؤں نہ پھسل جائے، دعا کرے قیامت کے دن حشر میں نشر نہ ہو جائے، قبر کے عذاب سے بچا لے۔ یہ کرتے ہیں ہم، میں نہیں کہتی نہیں کرتے، پر ڈومیننٹ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج کھانا نہ کھایا ہو تو آپ اگلے ہفتے کا کھانا تو نہیں پکائیں گی نا، آج کی ضرورت پوری نہ ہو، آج آپ کے گھر 10 مہمان آنے اور آپ ان کے پکانے بٹھانے کا فکر چھوڑ کر ایک ہفتے بعد جو بڑی دعوت ہے اس کی تیاری کرنے نکل جائے، تو نہ سمجھی کی بات ہے۔ آج ہم نے اپنی شارٹ ٹرم دنیا کو، جو بالکل وقتی ڈے ٹو ڈے لائف کی زندگی تھی، اس کو اتنا بڑھا لیا کہ جو اصل مقصد جو سر پہ پڑا ہے، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، وہ بھول گیا۔ آپ اور میں خود سے پوچھیں، اور الحمدللہ ہم بادشاہ اور گھرانوں کے لوگ ہیں، ہم جھگیوں میں رہنے والے لوگ نہیں کہ جن تک تعلیم ہی نہیں پہنچی ہوئی، ہم کوئی سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے لوگ نہیں، پلوں کے نیچے بیٹھے نہیں، یعنی ہم سب اس وقت جتنے بھی ہیں ہم مہذب اور باعزت لوگ ہیں، ایسی ہے نا؟ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی چور چکوں کے خاندان سے نہیں ہے، ہمارے پورے خاندان میں کوئی چور نہیں ہوگا انشاءاللہ، کوئی بدماش نہیں ہوگا، کوئی ہائی جیکر نہیں ہوگا، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ہم سارے عالم بھی نہیں، ہم فاضل بھی نہیں، ہم صدر بھی نہیں، ہم وزیر بھی نہیں، ہم ہیں تو میڈیوکر بیچ کے، لیکن ہم اچھے لوگ ہیں۔ ہم اچھے لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے آج تک قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا؟ ہمارے گھر کا بچہ بچہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہاں سے لے کر سورۃ فاتحہ تو ایک الگ دیباچہ ہے، سورۃ ناس تک، جہاں سے کوئی چاہے قرآن کھول کر کے لو سنو، میں سنانے کو تیار ہوں۔ دیکھیے، ہم تو پھر ایوریج ہیں، جب ایوریج میں یہ نہ ہوا تو پھر اس سے نیچے والوں سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم سے اوپر کے سٹینڈرڈ کے لوگ جو دین میں نیک ہیں آگے، اگر ان کو یہ سب آتا ہے تو وہ ہم سب کے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک بچہ بچہ اور ایک بدو بیدونس جو عربی آتے تھے، ان کو بھی اس چیز کا غم ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی میری نجات کس میں ہے، اور شاید اس میں ہمارا اتنا قصور نہ بھی ہو، میں مانتی ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ہر ایک کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے قیامت کے دن، یعنی شک کا فائدہ دینا ہے۔ ہمارا قصور کیوں نہیں ہے کہ یہ پچھلی پوری صدی جو گزر گئی نا، اس میں قرآن کو صرف پڑھنا سکھایا گیا، قرآن پڑھ لو، نماز پڑھ لو۔ ہم سب اپنے نانی دادی پھپھی چچی جو بڑے تھے ان کی ڈانٹ کھا کھا کے بڑے ہوئے نا۔ کیا آپ کے نانا نہیں آپ کو نماز کے لیے کہتے تھے؟ آپ کے دادا اور آپ کے سسر آپ کو پردے کا حکم نہیں دیتے تھے؟ وہ چلے گئے، جان چھوٹی، آزاد ہیں آج، اب کوئی کہنے والا بھی نہیں۔ وہ لوگ چلے گئے جو محفلوں میں پکڑ کے سروں پہ دوپٹے دیتے تھے، اور وہ چلے گئے جو بیٹیوں کی رخصتی پہ شور مچا دیتے تھے۔ آج دن بدن ایسے نہیں لگ رہا کہ خاندان بزرگوں سے خالی ہو رہا ہے؟ اور جو کل کے بزرگوں کا روگ عزت اور لحاظ تھا، معذرت کے ساتھ، آج کے بزرگوں کا وہ نہیں دکھتا۔ کل باپ اور بیٹی کے تعلق میں جو ایک خوف بھی تھا، عزت بھی تھی، پیار بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک روب بھی تھا، آج کے باپ بیٹی کے تعلق میں وہ نہیں دکھتا۔ کل بہن کو جتنی ڈانٹ بھائی سے پڑتی تھی اور غیرت کے نام پہ بھائی جو سوکھا روب ڈالتے تھے، آج کے بھائی کی وہ ضرورت نہیں ہے۔ کتنی غیر مخصوص تبدیلیاں آ رہی ہیں ہمارے لائف سٹائل کے اندر، ہماری زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو ہم ہر آنے والا دن دین تو دین اپنی روایات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے روایات بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، کسی بھی قوم کی روایات وہ جب بدل جاتی ہے نا تو پھر ان کا دین بھی بدل جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم بڑے روایتی طور پہ مہذب گھروں سے تربیت لیے ہوئے لوگ تھے ہیں، پر آج دن بدن آپ دیکھیے کہ ہماری اولادیں، اولادوں کی اولادیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو باقی چیزیں ہیں وہ ہمارے کہاں ہیں۔ اپنے آپ کو میں اپنے اوپر اور آپ اپنے اوپر لے کر سوچئے کہ آج ہم جس ڈگر پہ چل رہے ہیں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک منٹ میں نقشے بدل نہیں سکتا، پلٹ سکتا ہے نا؟ بلکہ پچھلے دو ویک پہلے جب اسی خاندان میں ایک اور ڈیتھ ہوئی تھی، تو اسے ایک دن پہلے ایک شادی کھائی تھی ہم سب نے، یعنی ادھر شادیاں، ادھر موتیں، اور ادھر درس، یعنی یہ دو تین چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صدموں کو خوشیوں میں اور خوشیوں کو صدموں میں بدل سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، بہت چھوٹا سا، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ میں اور آپ اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں کچھ چیزوں کو سمجھیں۔ ٹاپک ہے دلہن کا جنازہ۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہمارے دور کے عزیزوں میں ایک لڑکی کی شادی ہوئی، وہ لڑکی بے پناہ خوش تھی، قریبی رشتہ داروں میں ہی اس کا رشتہ طے ہوا تھا، دونوں خاندانوں کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس لیے دونوں طرف سے ہی خوب خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ جہیز اور بری کو شاندار بنانے کے لیے رات دن بڑے بڑے شاپنگ مال سے خریداری کی گئی، لاکھوں کی مالیت کا عروسی جوڑا تیار کروایا گیا، آخر کار شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ ایک نامور بیوٹی پارلر سے دلہن تیار کروائی گئی، دلہن کو لا کر جب سٹیج پر بٹھایا گیا تو ہر آنکھ میں ستائش تھی، ستائش یعنی تعریف کر رہے تھے۔ مہمانوں کا ایک ہجوم تھا، ہر طرف زرق بر کانچل تھے، پھولوں کے ہار اور گجروں کی خوشبوئیں تھیں، میوزک سسٹم پر بجتی مدھر دھنوں نے سارے ماحول پر ایک سحر سا تاریکہ رکھا تھا۔ دلہن کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی، آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ رات گئے، دلہن کی رخصتی ہوئی، اگلے دن ولیمے کی شاندار دعوت ہوئی، تقریب ہوئی، عزیز رشتہ دار سب کہہ رہے تھے دلہن کو ایسا خوش پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ یہ خوشی کتنے دن کی ہے، ابھی ہفتہ بھی نہ گزرا تھا، شادی کی رسمیں ابھی تک چل ہی رہی تھیں، دلہن کسی دعوت میں جانے کی تیاری کر رہی تھی، اچانک طبیعت خراب ہوئی اور ہاسپٹل جاتے جاتے ہی دم دے دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ گھر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تک خوشیوں کا گہوارہ تھا، چاروں طرف کہکہے بکھر رہے تھے، اب وہاں ایک صفے ماتم بچ چکی تھی، عزیز و اقارب کے رونے دھونے سے ایک کوہرام بپا تھا۔ وہی لڑکی جسے تھوڑی دیر پہلے تک دلہن دلہن کہہ کر پکارا جا رہا تھا، اب اسے لوگ میت میت کہہ رہے تھے۔ اپنے پرائے سب اکٹھے ہوئے، میت کو غسل دیا گیا اور کچھ ہی دیر میں ایک نئی نویلی دلہن کا جنازہ اٹھ گیا۔ میت دفنا دی گئی، سب لوگ قبر پر مٹی ڈال کر قبرستان سے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ماں باپ، بھائی بہن، عزیز رشتہ دار چند دن رو دھو کر خاموش ہو گئے۔ دلہے میاں بھی کچھ دن بعد دوسری شادی کر لیں گے۔ ایک نوجوان حسین پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی کی زندگی کا باب ختم ہو گیا۔ दुनिया अपनी डगर पर चलती रही, किसी को कुछ फ़र्क ना पड़ा। वही खाना पीना, सोना जागना, हंसना बोलना और ज़िंदगी के बाकी सारे मामूलात बराबर चलते रहे। और मैं सोच रही थी, वाकई किसी के चले जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, मौत से फ़र्क तो सिर्फ मरने वाले को पड़ता है। आज वो कब्र में तन्हा हो गई, इसके कीमती लिबास और जेवरात यहीं रह गए, इसका जहाज़ी साइज बेड, मखमली बेडशीट, खूबसूरत मुनक्कश नक्शो निगार वाले जेवरात यहीं रह गए, इसकी मेज़ पर सजा मेकअप का सामान, अलमारी में लटके कीमती मलबूसात, ज़रा फासले पर रखा चूड़ीदान जिसमें रंग बिरंगी कांच की झिलमिल करती चूड़ियाँ तरतीब से रखी थीं, सब कुछ यहीं रह गया। साथ गया तो सिर्फ एक कफन, जहेज़ का सारा कीमती सामान इसे बरतना नसीब ना हुआ। महीना पहले से ब्यूटी सैलून के चक्कर लग रहे थे और जिस बदन को पूरी आबोताब से निखारा गया, आज वही बदन मनो मट्टी तले कीड़ों की खुराक बन रहा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। ये है इस ज़िंदगी का इख्तिताम जिसे हम हर लहजा संवारने में लगे रहते हैं। लेकिन ठहरिए, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, हमें तो लग रहा ख़त्म हो गई, बल्कि बात दरअसल यहाँ से शुरू होती है। अगर सिर्फ एक हफ़्ता पहले दुल्हन को पता चल जाता कि शादी के चौथे पांचवें दिन ही इसकी मौत आ जानी है और फिर इसे आगे जाकर खुदाए वक्तहु ला शरीक के सामने पेश होना है, अपने एक एक अमल का हिसाब देना है, तो क्या फिर भी वो अपनी ज़िंदगी के बचे खुचे दिन ऐसे ही गुजारती? ज़रा सोचिए, एक शदीद झुरझुरी बदन का इहाता कर लेती है जब हम ये सोचते हैं कि हाँ, यूं ही एक दिन हमें भी मर जाना है, मौत से किसी तरह फरार मुमकिन नहीं। अगर आप इसकी जगह होती तो क्या करती? अगर मैं उसकी जगह होती तो क्या करती? ज़रा सी देर के लिए तन्हाई में जाकर सोचिए, अगर मुझे पता चल जाता है कि हफ्ते बाद मेरी मौत यकीनी है तो मैं क्या करूँगी? अगर मुझे रत्ती भर भी खुद आखरत के दिन और अपने हिसाब किताब पर यकीन है, तो मैं इस बच जाने वाली चंद रोज़ा ज़िंदगी का एक पल भी ज़ाया नहीं करूँगी, ना फरमानियों से तौबा कर लूँगी, हकूक़ व फ़राइज़ की दिलो जान से अदायगी करूँगी, मैं लोगों के साथ अपने सारे मामलात दुरुस्त कर लूँगी। मेरी अकड़, मेरी अना, मेरा गुरूर सब किसी कोने में जा सोएगा। मैं रो रो कर अपने रब को मनाऊँगी कि मैंने ज़िंदगी बहुत गफलत में गुजार ली। ऐ मेरे रब, अब जबकि तुझसे मुलाकात का वक्त आ ही चुका है, तो मुझ गुनाहगार को माफ़ कर दे, मुझसे राज़ी हो जा। मेरा एक एक पल कीमती हो जाएगा, मैं अपने नामुकम्मल कामों को जल्दी जल्दी पाया तकमील तक पहुँचाऊँगी। मेरे दिन लोगों के साथ अपने मामलात को अच्छा करने और आते अल्लाह के हजूर माफ़ियाँ मांगने और गिड़गड़ाने में गुजरेंगी। कोई मुझसे कुछ कहेगा, अभी तो चुप करके बर्दाश्त कर लूँगी। खाने पीने पहनने ओढ़ने की हिरस में एक दूसरे से आगे निकल जाने का होश मुझे बाकी ही कब रहेगा? बस एक ही दिन होगी कि मेरा मालिक मुझसे राज़ी हो जाए, मुझ पर किसी का कोई हक हिसाब किताब बाकी ना रहे और मैं मरते ही अल्लाह की बारगाह में सजदा रेस हो जाऊँ। अब ये एक सच्ची कहानी थी और ये सच कभी भी किसी के साथ दोहराया जा सकता है ना। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। देखिए, ये तो शादीशुदा लड़की की बात है, क्या आपकी मेरी मौत हमारी जूती के तस्मे से भी ज़्यादा करीब नहीं है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात से ये बात पता चलती है कि मौत किसी इंसान की जूती के तस्मे से भी ज़्यादा करीब होती है। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन जब गौर किया, क्योंकि अल्लाह के नबी का हर लफ्ज़ जो होता है ना, वो मोतियों की लड़ी होती है, तो पता क्या चला कि जब कोई गिरता है ना खड़ा खड़ा, तो सबसे पहले अपने जूते पर गिरेगा। मुराद यह है कि एक सेकेंड में अगर अचानक मौत आती है ना, तो उस वक्त फिर हमें को बचाने वाला नहीं होगा। तो ये चंद बातें असल में तो मेरे अपने लिए थी, बहुत लंबी बात की ना ज़रूरत है ना फ़ायदा होगा। बस आज इस सोच के साथ ये बात की है आपसे भी कि हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। किस बात पे? कि अभी हम जिंदा हैं, मैं भी ज़िंदा हूँ। ख़ुद को चुटकी काटें और यकीन दिलाएं कि मैं भी ज़िंदा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले भी जलजले के झटके आए थे, आपने भी महसूस किए होंगे, इसी जगह पे थे हम लोग, सियालकोट थे उस दिन। किसी भी लम्हे ये जरा सी जुम्बश बढ़ेगी और हम जमीन के ऊपर की बजाय नीचे जा सकते हैं। असल बात ये है कि अल्लाह सुबहाना ताला ने आपके मेरे लिए ये सब वक्त मोहलत का रखा है, और ये बार बार के बुलावे हमें इस बात का यकीन दिला रहे हैं कि हम भी जाने वाले हैं। जाने से पहले क्या करूं, ये चंद जुमले हैं बस। आप देखिए कि अपना मुहासबा करते हैं, अभी तक क्या किया है और क्या नहीं किया। दुनियादारी के तो कामों की फ़िक्र हमें खुद भी बहुत होगी अल्लाह के हुक्म से, और हमें दूसरे भी करा देंगे, ये काम कर लो, वो कर लो। अगर कोई बीमार होता है तो लोग उसको मशवरे देते हैं ना, अच्छा फलां बच्चे की शादी कर देते हैं, अच्छा खुशियाँ देख ले, ये कर ले। लेकिन आपके मेरे लिए जो असल बात है वो ये है कि अल्लाह का सामना करना है ना हमने। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने एक इतनी खूबसूरत किताब, इतना प्यारा दीन हमें दिया, ये सिलेबस है, अभी अमल की बात नहीं हो रही, सिर्फ सिलेबस। आपका बच्चा पूरा साल स्कूल जाता है, फिर उसके बाद टेस्ट और इम्तिहान देता है ना, और उसके नतीजे के तौर पे अगले मरहले में दाखिल हो जाता है। अगर आप मैं अल्लाह के पास गए, हमारी 30, 40, 50, 60, 70 जिसकी जो भी एज है उसको सोच लीजिए, अगर उस उम्र तक पहुंचने पर अगर हमने अल्लाह की सिर्फ बात को समझा ही नहीं, तो क्या कल अल्लाह ताला कयामत के दिन हमसे इसका हिसाब नहीं लेगा? जितनी भी नेकियां की है ना, उसको थोड़ा समझें, क्योंकि नहीं पता कि आगे घाटी कितनी है। आप देखिए, आप किसी बाहर के मुल्क जाते हैं ना, जितना भी पैसा रख लें, आप कहते नहीं और ना रख लें, कम ना हो। हालांकि आजकल तो बीसियों चीज़ें होंगी ना, कहीं कार्ड यूज़ कर लेंगे तो कहीं चेकबुक होगी, लेकिन इंसान जब सफ़र पे जाता है ना, तो वो ज़्यादा सफ़र साथ रखता है, ये सोच कर कि अगर कहीं ज़रूरत पड़ गई तो क्या करेंगे। आप और मैं सोचें खुद को अपने ऊपर लेकर, अगर वहाँ सिर्फ कोई एक नेकी कम पड़ी, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन कोई देने को तैयार नहीं है, तो उसके बाद मेरा क्या बनेगा? अल्लाह मुझे और आपको एक दफ़ा वापस आने का मौका नहीं देंगे कि जाओ फिर ले आओ, जाओ फिर अब चले जाओ, जो करना है आज करना है। अभी नमाज का वक्त होगा, ये अज़ान आपके मेरे लिए है, जो चले गए उनके लिए नहीं है, वो पढ़ भी नहीं सकते, कब्र में वो पढ़ना भी चाहेंगे तो नहीं पढ़ सकते। जो नेकी की दावत आपको मुझे मिलती है, ये आपके मेरे लिए है। याद रखिए, सिर्फ रस्मी नेकियों से हम जन्नत में नहीं जाएंगे, वरना तो इब्लीस जाए, उसने बहुत रस्मी नेकियां की थी, और अब्दुल्ला बिन उबई ने बहुत सारी रस्मी नेकियां की थी, लेकिन मेरी आपका असल नेक हो उसके लिए नियत करते हैं कि अल्लाह जो वक्त बाकी बचा है इसको मोहलत का वक्त बना, बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करा, अपनी उम्र को बचपन जवानी बुढ़ापे इसको बिल्कुल आड़ ना समझें, अपनी मसरूफियात को बिल्कुल आड़ ना बनाएं, अल्लाह एक लम्हे में ख़त्म कर सकता है सारी मसरूफियात, अपनी सेहत बीमारी को आड़ ना बनाएं। अगर दिल से नियत करेंगे ना, तो आप देखिएगा कि अल्लाह की रहमत होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए कि नेकियां करते हैं हम, अपनी नेकियों को चेक कर लें, ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मनपसंद नेकियां तो नहीं कर रहे, बस आपकी जेब में नोट हैं लेकिन पता नहीं है कि असली हैं कि नकली हैं, तो नकली होंगे तो पकड़े जाएंगे, एक जगह भी जाके चलाने की कोशिश करेंगे, अगला आपसे पूछेगा कि बताओ जी आया किधर से, और चलो जेल में। इस ज़िंदगी को मुखलस समझना है, इल्म के लिए निकलना सीखें, यकीन करें खुशी गम के लिए हम निकलते हैं, लेकिन जो इल्म के हसूल के लिए निकलता है, एक एक कदम पे फरिश्ते पर बिछाते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।